सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। यह कुंदकुंद आचार्य भगवान का जो समय सार है, उस समय सार के हम आत्मख्याति नाम की जो टीका है उसका तीसरा नंबर का कलश देख रहे थे और उस कलश में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि यह जो मैं टीका लिख रहा हूं उस टीका के कारण से मेरी जो विशुद्धि है वो परम विशुद्धि हो जाए। देखो यहां पर तो ये समझा रहे हैं कि ये तो मुनिराज है, उनके तो तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक तो वितरता है, वे भी मतलब शुद्धोपयोग रूप से ही वर्तते हैं, शुद्धोपयोगी है, फिर भी यहां समझा रहे हैं ऐसा होते हुए भी अभी भी मेरे में किसी न किसी प्रकार की कमी है, पूर्ण वितरकता प्राप्त हुई नहीं है, ये बात उनको खटक रही है और वो समझा रहे कि इनका ये इस ग्रंथ की टीका करते करते मेरी परम विशुद्धि हो जाए, ऐसी वो भावना भाते हैं। ये हम देखने के लिए पृष्ठ क्रमांक 27 पर आए हैं। ये लास्ट पैराग्राफ जो है वो आधा हमने पढ़ा था, फिर से दोबारा उसको हम देखेंगे। 27 पृष्ठ के ऊपर आखिरी पैराग्राफ, आ अशुद्ध परिणति नो हेतु मोह नामनु कर्म छे। अभी यहां क्या समझा रहे हैं, अभी उनकी अशुद्ध परिणति चल रही है तो उसको कौन कारण हो सकता है, तो कहते हैं मोह। तो ये मोह कैसे हो सकता है, उन्होंने तो तीन कषाय चौकड़ी का तो अभाव कर दिया है, तो मोह कैसा रहेगा उनको। लिख रहे हैं देखो, हाँ अशुद्ध परिणति में हेतु मोह छे। हाँ तो चारित्र मोह में कौन सा है, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है, तो वो ये समझा रहे हैं कि आ अशुद्ध परिणति नो हेतु मोह नामनु कर्म छे, आ निमित्त नैमित्तिक संबंध छे। ये बता के क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो कर्म है उस कर्म के कारण इस जीव में अशुद्धि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां जीव में कुछ प्रकार की जो अशुद्धि है और वहां मोह कर्म का यानी अभी चारित्र मोह का वहां उदय है, लेकिन मोह इसलिए अशुद्धि है और अशुद्धि है इसलिए वहां कर्म है, ऐसी बात नहीं है। या क्या समझा रहे, आ निमित्त नैमित्तिक संबंध छे तेना उदय न विपाक ने लीधे विकार छे एम नथी। क्या कह रहे, पन मारू विपाक मां जोड़ान थयू, यानी स्वयं उसमें जुड़ गए, अपने स्वरूप में एकाग्र न रहे, सप्तम गुण स्थान से छुटकर छठे में आए तो क्या हो गया, वो उस जो उदय हुआ उसमें वो जुड़ गए ऐसा कहेंगे। क्या कहा, पन मारू विपाक में, विपाक यानी कर्म का जो फल हो रहा दे रहे हैं, कर्म का उदय हो रहा है, एमा जोड़ान थयू एने लीधे छे, यानी मेरी ही कमजोरी है, मेरी ही इसमें मेरा अपराध है, ऐसा कहे कि मैं इसमें जुड़ जा रहा हूं, मारी परिणति नबड़ी छे, कमजोर छे, एटले जोड़ाई जाय छे, क्या निमित्त काय करतु नथी। एक बाजु एम कहे कि समकित ने आश्रय ने बंद होय नहीं, ए मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी कषायना अभाव ने अपेक्षाएं छे। क्या समझा रहे हैं, देखो जब हम दृष्टि के जोर के कारण से ऐसा कहेंगे, यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत मामूली सा जो कोई आश्रय बंद हो रहा है वो तो सम्यक्त्व क्यों भी नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कि चक्रवर्ती जो है भरत, उस भरत चक्रवर्ती के कह रहे हैं उसके जो भोग जो है वो भोग निर्जरा का कारण है, यानी ये जो षटखंड का आधिपत्य है इतने उसके वैभव है, उस वैभव का भोग जो चल रहा है वो उसके लिए निर्जरा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो उसके जो समझो परिग्रह रूप से जो उसके पास जो बिलोंगिंग्स हैं उसमें उसको कतई इंटरेस्ट नहीं है, इनसे मैं जुदा हूं, इनसे मैं भिन्न हूं, ऐसा अभिप्राय तो निरंतर वर्तता है, और उन्हें तो सारे दुनिया के जो कोई पदार्थ है उससे अपना निज स्वभाव अधिक लगता है, और वो उसी के अंदर ही अधिक से अधिक रममाण हो जाए, ऐसे उनके भी इच्छा भी है और प्रयत्न भी है। तो बाह्य जो कोई बातें हैं वो उनके लिए कोई मोह पैदा करे ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करे, अभी है तो भोगना पड़ता है। नहीं समझ रहे, इधर लड्डू का और भोगना पड़ता है कहने वाली बात हो गई आपकी। अरे भाई आप कभी बीमार पड़े हो कि नहीं पड़ी, तो वहां जो कड़वी दवा दी जाती है तो प्रेम से खाती हो ना, क्या करे, मजबूरी है तो खाना पड़ता है। ऐसे ये जो कोई जो है सारी बातें वो है तो उसका भोग चालू है, लेकिन उस भोग में कोई अच्छापन नहीं लगता है। जैसा हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कोई खाना खिलाए तो खाना कड़वा लगता है, फिर भी हम खाने को छोड़ते नहीं, खाओ भी, तुम नहीं खाओगे तो और बीमार पड़ जाओगे, थोड़ी सी ताकत के लिए कोई शरीर के लिए तुम थोड़ा सा खाओ, ऐसा कर करके हमको खाना खिलाते, उसमें हमको कितना इंटरेस्ट होता है फिर भी खाते हैं। वैसा यहां है, इनको इन वैभव में किसी बात की कोई मतलब अधिकता नहीं लगती है, इसलिए वहां उनके जो अंतरंग में जो स्थिरता हुई थी एक कजाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक समझो, उतने प्रमाण में तो उनकी भी निर्जरा हो रही है। अब आगे क्या कहते हैं, समकीति ने आश्रय ने बंद हो ही नहीं, ये मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी कषाय ने अभाव नहीं अपेक्षा है। और यहां क्या कह रहे हैं, अभी तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है फिर भी कह रहे कि मेरी अशुद्धि है, लेकिन जहां जिस बात को जो बताना चाहते वो समझना चाहिए। हम ऐसी तुलना करेंगे कि पहले मतलब एक कषाय चौकड़ी का अभाव है उसको आश्रय बंद नहीं है और इनको है, ऐसा नहीं है, वहां किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है और यहां किस बात को विशेष रूप से इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ये बात हमारे ख्याल में आनी चाहिए। एक बार जो एम कहे कि ज्ञानी नो भोग निर्जरानो हेतु छे, अभी मैंने जो बात बताई वो ये, ए दृष्टिना जोर थी अपेक्षाएं बात करी छे, यानी हम बार बार अन्य पदार्थों को भूल कर क्या कहते हैं, अपने स्वरूप की याद रख के उसी में एकाग्र हो जाए, दृष्टि का विषय है इसलिए वो बात वहां पर बताते हैं। आई मुनि कहे छे कि मारे अशुद्धता नो पण अंश छे, तेमा निमित्त मोह कर्म छे, रागादी परिणामों की व्याप्ति मारा मा मारा थी छे। क्या कह रहे, ऐसा समझा रहे हैं, ये अभी मेरे में जो राग के परिणाम जो चल रहे हैं वो राग कहाँ प्रसरा हुआ है, व्याप्त कहाँ हुआ है, तो कहते कि मेरे में व्याप्त हुआ है, और किस कारण साहब, वो कर्म का उदय आया इसके लिए ना, तो कहते नहीं, ये मारा थी मेरी ही कमजोरी है, मारी ज नबड़ाई छे के हूं परमा जोड़ाई जाऊं छू। इसलिए उन्होंने शॉर्ट में क्या बताया, रागादि परिणामों की व्याप्ति, व्याप्ति यानी वो राग पूर्ण व्यापा हुआ है। किसको कितना व्यापा होगा राग? हाँ हेतल बता पाएगी तुम राग कितना व्यापा होगा? शाबाश, असंख्यात प्रदेश में। क्यों असंख्यात प्रदेश ही? क्योंकि ये चारित्र गुण है ना। चारित्र गुण कहाँ रहता है कि जीव के संपूर्ण भागों में, तो उसकी पर्याय कहाँ होगी? पूर्ण भाग में ही होगी। ख्याल में आया? तो यहाँ कह रहे हैं कि मारा मां मारा थी और मारा मां छे व्याप्त थयेलो छे, परिपूर्ण रीते भरेलो छे। शू कहे छे? रागादि परिणामों की व्याप्ति मारा मां मारा थी छे, पर्याय मां विकारनी व्याप्ति मारी कमजोरी ने लईने क्यारथी छे? अनादिथी छे। आज सुधी अमे ओळख्या नथी। अमे तो बहु सुखी छे भाई, के रोज ने अमारा बैंक बेलेंस वधतो जाय ने अमारे काई चिंता नथी। अमे तो अही तो कहे छे के अनादिथी तू कमजोर छे। शू करे छे? विकार करे छे। अने विकार करवो ए हाची सारी वात छे के खोटी वात, एम समझावे। तो पर्याय मां विकारनी व्याप्ति मारी कमजोरी ने लईने अनादिनी छे, केटली परिणति निर्मल होवा छता पूर्ण निर्मल नहीं हुआ थी, मारे निरंतर कलुषित परिणाम छे, एनाथी हूं व्याप्त छू। अभी क्या समझा रहे? देखो केटली परिणति निर्मल, ये तो हमें याद होगा अभी सबको कि अपने स्व आत्मा में कहो या प्रत्येक जीव द्रव्य में अनंत गुण है। वो कितने अनंत है तो अभी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे अनंत तो हमने गिने थे, वो अनंत कितने होते हैं। तो कह रहे उसमें से अनंत गुण तो निर्मल रूप से परिणमित हो रहे हैं और अनंत गुण तो अभी अधूरी अवस्था में, यानी अभी विकार रूप से परिणमते कुछ आधे निर्मल और आधे अभी मलिन इस अवस्था में है। तो क्या कह रहे हैं? केटली परिणति निर्मल होवा छता पूर्ण निर्मल नहीं हुआ थी, मारे निरंतर कलुषित परिणाम छे।
अपनी स्वयं की बात है, छठे गुणस्थान वाले कितनी परिणति तो
सम्यक हो गई है,
शुद्ध रूप परिणति चल रही है, जीव कषाय का अभाव हुआ है, फिर भी अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए मैं निरंतर कलुषित हूँ।
देखो हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो हम तो फूले नहीं समाते, हम तो ऐसा है ना ऐसा है ना ऐसा है, ऐसा करके हम अपनी बड़ाई करते हैं। तो यहाँ मुनिराज स्वयं जो शास्त्र की टीका कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे में अभी कलुषित परिणाम है। किस अपेक्षा से? जो परिपूर्ण शुद्ध ऐसा जो वितरागी परिणाम है, जो परिपूर्ण शुद्ध ऐसा जो सर्वज्ञ परिणाम है, वो मेरे में नहीं है। जो सिद्धों में जो परिपूर्ण शुद्धता है, प्रत्येक गुण की जो परिपूर्ण पर्याय में शुद्धता है, वैसी मेरी अभी नहीं है, ये उसकी खंत है। जैसो
उन्हीं को तो शुभ भाव चल रहे हैं और वो मेरी कलुषितता ऐसे क्या है ना, अभी थोड़े शुभ भाव हो जाए, अशुद्ध से छुटकर तो हम और अपने को मोटा गर्मी मानी से।
देखो हम देखते हैं लौकिक में देखते हैं कि हमारे बाजू वाले के पास पांच गाड़ी है, तो मैं क्यों पांच गाड़ी पौने पांच रखूं, मैं भी साढ़े पांच यानी छह गाड़ी रखूं, ऐसा होता है ना। उसके पास 9000 साड़ी है तो मेरे पास 10000 साड़ी है, ऐसा देखें ना। तो उसी में हम क्या बोलते हैं तुम लोग गुजराती में, शरियत रखते हैं, होड़ करें कॉम्पिटिशन, कम्पेरिजन होड़ करे एटले सरखामणी करे। चालो हाँ, पण अहींया कहे छे के हूँ सर्वज्ञ नथी ने वितराग नथी, अने ए वितराग तो अमारामां केम आवे, सर्वज्ञपणुं केम आवे, तेथी खंत पड़ी छे। इसको गुजराती में कहते आवी खटक होय ए जीव ज आगळ वधी शके। ख्यालमां आव्यो ने? क्या कहते देखो, केटली परिणति निर्मल होवा छता पूर्ण निर्मल नहीं होवा थी, मारे निरंतर कलुषित परिणाम छे, एनाथी हूँ व्याप्त छू, कर्म तो निमित्त मात्र छे। स्वामी कार्तिके अनुप्रेक्षा में आवे छे के समकीति वस्तु तरीके पोताने प्रभु माने छे। ये सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह सम्यक दृष्टि जीव एज अ द्रव्य पोताने प्रभु माने छे। यानी जो त्रिकाली स्वभाव है वह तो प्रभु जैसा ही है पन पर्याय में पोताने तृणतुल्य पामर माने छे। यानी पर्याय में अभी मुझे बहुत खामी है, तृणतुल्य यानी जिसकी कोई कीमत नहीं है। तृण यानी समझ में आया तुम, ये सूखा हुआ घास होता है ना, हे आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाँ वो जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको घोड़ा भी मुंह नहीं लगाता है, सूखा हुआ घास को क्यों लगाएगा, वो तो हरे घास को खाएगा। तो ऐसा पर्याय में तो मैं ऐसी खोटी हालत में हूं, ऐसा वहां लिखा है। कहां पर? स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में उन्होंने जो शास्त्र लिखा है उसमें, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, क्या केवल ज्ञान की दशा अने क्या मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषायना अभाव पूर्वक नी चारित्र दशा, द्रव्य तरीके हूं पूर्ण प्रभु छू, ए मारू लक्ष्य छे, पर्याय मा पामरता छे, तृणतुल्य छू, ए टावा माटे मारो प्रयत्न, टीका करवा टाळे छे, अंतर स्वभाव सन्मुख थवा मा जो मारा प्रयत्न नी दशा छे। मुनिराज कहे छे के मारी पर्याय मा मलिनता छे, संज्वलन कषाय छे, छता द्रव्य शुद्ध छू, ए शुद्ध स्वभाव नी एकाग्रता ना बढ़े, सर्व कषाय नो नाश थई मने परम विशुद्धि थशे ए निश्चित छे। बाबा अमृत चंद्राचार्य कहे छे के मारी परिणति मा थोड़ी अशुद्धता छे, ए मारा लक्ष्य बहार नथी, हूँ शुद्ध ज थई गयो अने अशुद्धता आवे छे ए बधी निर्जरी जाए छे एम नथी, अशुद्धता आवे छे एटली मलिन दशा छे, एटलो कर्मनो बंध थाय छे, तेमा मोह कर्म निमित्त छे। पर्याय मा अशुद्धता छे ए मारा थी मारा मा व्याप्त छे, माटे एम गर्व मा न चढ़ी जाईश के समकित थई गयु एटले बस सर्व थई गयो, कर्मनो थोड़ो बंध थाय छे, एमा अशुद्धता निमित्त पण छे। जुओ दृष्टिनु जोर तो ध्रुव उपर छे, ध्रुव कहो या त्रिकाली द्रव्य स्वभाव कहो अर्थे कहे, अने पर्यायमा शुद्धता अने अशुद्धता बन्ने अंशोनु ज्ञान यथार्थ वर्ते छे। याने उस जीव को जो सम्यक दृष्टि जीव है उसमें पार्शल शुद्धता तो आई है और अभी पार्शल अशुद्धता भी है, और दोनों को उन्हें यथार्थ ज्ञान है। शुद्ध द्रव्य नु जेने प्रयोजन छे एटले जे ज्ञान मा शुद्ध पूर्ण द्रव्य स्वभाव ज्ञायक वितराग स्वभाव ध्रुव एक रूप स्वभाव नु जो प्रयोजन छे, यानी इनफैक्ट क्या है, ज्ञान मा ध्रुव एक रूप स्वभाव नु जो प्रयोजन छे, उसके बाकी के सब उसके विशेषण अलग अलग नाम दिए। एवा द्रव्यार्थिक नैमी दृष्टिए हूँ शुद्ध चिन्ह मात्र छू, बधा सम्यक दृष्टि पोताने द्रव्य दृष्टिए शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति माने छे, चौथी पांचवें छठे गुणस्थाने पर्याय मा फेर छे, एवा जुदी छे। तो ये चौथे पांचवें छठे गुणस्थान मा पर्याय मा फेर छे, तो कई पर्याय मा फेर हसे, श्रद्धा गुण ना पर्याय मा फेर हसे के नहीं, चारित्र में चलो क्या, तो मुख्यतः चारित्र की बात लेना, क्योंकि चौथे में एक कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक जो वितरकता है, पांचवें में दो कषाय चौकड़ी पूर्वक की वितरकता है, इस तरह लेना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आवे छे कि जेवु समकित तीरंचनु एवु समकित सिद्धनु, यानी जो समकित यानी यहां सम्यक दर्शन लेना हो, यानी श्रद्धा की अपेक्षा से कोई सिद्ध अपने द्रव्य में बहुत श्रद्धा रखता है अपने स्वभाव में, और कोई अन्य चतुर्दगुण स्थान वर्ती भले 3 इंच होवे उसकी श्रद्धा कुछ कमी है ऐसी बात नहीं है। थोड़ा भी कोई न्यूनता हो तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगी, क्योंकि देखो द्रव्यान योग जो होता है ना वो तो श्रद्धागुण की दो ही पर्याय को मानता है, हा? एक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व, बीच में कोई रास्ता ही नहीं है। और कर्णानुयोग कितने मानते हैं श्रद्धागुण की पर्याय, कर्णानुयोग नहीं जानती है। तेजू बहन जानती है, आप जानती है नहीं? अच्छा यहां पर कौन बताएगा? आप भी नहीं जानती? जोर से हाँ रुक जाओ, अभी टाइम नहीं गवाना। हमारी क्या नाम है ये बहन बता दी, वासंती बहन, हाँ 3 हाँ कौन कौन सी? हाँ हाँ अच्छा विनोद भाई आप क्या बताएंगे? श्रद्धागुण की पर्याय हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो आप थोड़ा सा वो आपने कर्म की अपेक्षा ये 3 बातें बताई, यहां श्रद्धागुण की बात चल रही है। देखो क्या बता रहा हूं मैं, देखो द्रव्यानुयोग क्या क्या बताएगा कि श्रद्धागुण में 2 ही पर्याय है, यानी 2 ही पर्याय की बात करेंगे बताएंगे तो जो अन्य को मानता नहीं ऐसा नहीं, वहां प्रमुखता 2 ही बातों की बातें हुई चलिए, एक तो जीव मिथ्यात्व है और दूसरा सम्यक है। कर्णानुयोग जो है वो कहेगा कि नहीं, या तो वो मिथ्यात्व होगा या तो सासाधन सम्यक भी होगा या सम्यक मिथ्यात्व होगा, यानी उसके मिश्र श्रद्धा है और उसकी अव्यक्त ऐसी जो अतत्व श्रद्धान रूप श्रद्धा है दूसरे गुणस्थानवर्ती जीवों की, और एक है सम्यक भी है। पर वो क्या हो गया, उन्होंने पहले 3 गलत बताए, कोई बात नहीं ठीक है। ये क्या है, हम बहुत सीखे हैं मतलब बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन जब उसका हमको एप्लीकेशन होता है तब थोड़ी गड़बड़ कहीं हो सकती है ख्याल में। तो हाँ जी हाँ क्या बोल रहे हैं, ये गुणस्थान के नाम उस जीव के श्रद्धा गुण के अलग अलग प्रकार के कारण पड़े हुए हैं। मैंने बताया दूसरे गुणस्थान में अव्यक्त तत्व रूप श्रद्धान है और मिथ्यात्व के व्यक्त तत्व अव्यक्त अतत्व रूप श्रद्धान है, उसकी अव्यक्त है इसकी व्यक्त है, ये प्योर मिथ्यात्व है। वो अभी मिथ्यात्व सम्यक से गिरा है, अभी मिथ्यात्व हुआ नहीं है। लेकिन अभी सब बातें हम अभी बताएंगे तो हम सोमवार इतवार को क्या बताएंगे, ये समझना हो तो इतवार को आना पड़ेगा भाई। अभी हम सबको मेहरबानी कैसा करें, कोई हमारे पर मेहरबानी नहीं करना चाहता है, हमको ही करना पड़ता है क्यों। चलो आगे आगे देखो, जैसा जिसको वक्त मिले आओ भाई, हम दूसरा क्या, हम तो आपको प्रेरित कर सकते हैं, कंपल्शन तो नहीं कर सकते हैं। अब आगे यहां जो बात हो रही है दृष्टि, यहां हम आए थे ना, कहां आए थे, हाँ जेऊ समकित 3 इंच नु हो एवं समकित सिद्ध नु हो। तो अभी अपनी बात ये हो रही थी कि 3 इंच के जो चतुर्थगुण स्थान में 3 इंच के जो चतुर्थगुण स्थान में स्व आत्मा संबंधी जो श्रद्धान है और सिद्ध जीव का जो स्व आत्मा संबंधी श्रद्धान है उस सम्यक दर्शन में, यानी सम्यक दर्शन गुण की जो मतलब श्रद्धा गुण की जो पर्याय है सम्यक, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है ये बताना चाहते हैं। अब यहां इन्होंने 3 इंच को क्यों लिया, कि नारकी को भी होता है देव को भी होता है, फिर भी लोग देव को जरा बड़ा मानते हैं और नरक की बात सुहाती नहीं है, हमें तो 3 इंच मालूम है। अरे क्या है ये चिपकली होती है ना, चिपकली वो भी सम्यक दर्शन, ये चकली जो है ना चकली भी सम्यक दर्शन प्राप्त करे ऐसी योग्यता है उसको। ये तो चकली वाली उसको समझते हैं, चकली यानी चिमड़ी। हाँ नहीं हो सकता है कि पहले, अब वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन नीचे वाली होनी चाहिए भूमिका, क्योंकि ये तो मुनि अवस्था है ना 11 मतलब ये जो एलक और क्षुल्लक है वह तो मनुष्य की पर्याय की अपेक्षा से ही बताएंगे, उनके तो होगा नहीं। हो सकता है ब्रह्मचर्य तक जावे, मुझे पता नहीं है, पॉसिबिलिटी नकार नहीं सकते हम। लेकिन ये तो निश्चित है कि भाई ऊपर की जो 10-11 वाले जो होंगे वो नहीं होने चाहिए। अब अपनी मर्जी से नहीं होना है, जो होता हो मैं नहीं जानता, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं तो कल बोलेंगे यार दिनेश भाई ने हमको समझाया, ऐसा नहीं। मुझे जो पक्का मालूम नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन व्रत पालते तो जरूर है वो, यानी छना हुआ पानी यानी प्रासुक जल। कैसा? तो गर्मी से पानी गर्म होता है सूरज से, तो ऐसा गर्म पानी मतलब जो भी होता होगा वो जो अपना जो पहले का जो ओरिजिनल उसका जो कोई टेम्परेचर होगा। हाँ जी, झरने का पानी भी तो प्रासुक जल कहा जाता है, ऐसा ऐसा। फिर वो वेजिटेरियन ही खाना खाएगा, ऐसा सब बन। चलो, तो अपनी बात ये हो रही थी, जेवु समकित तीरंचनु एवु समकित सिद्धनु द्रव्य दृष्टि चिन्मात्र मूर्ति छू, पन परणती मा मोह कर्मना उदयनु निमित्त पामी ने मलिनता मारा थी छे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अधिकार मा आवे छे के मुनि ने अशुभ भाव तो छेज नहीं, फक्त कोई धर्म लोभी जीव ने देखी ने उपदेश देवानो शुभ भाव आवे छे। ए शुभ भाव पन पोताना पुरुषार्थनी कमजोरी छे। देखो अभी हम गुणस्थान की भाषा में कहेंगे तो वह उनका प्रमाद है। किनका? मुनियों का। तो वह प्रमाद हमारे लिए कितना कार्यकारी रहा। अगर वे ऐसा प्रमादी न होते यानी शास्त्र न लिखते तो ये बात हमारे तक कहां पहुंचती। क्या कह रहे? देखो, पहले तो उन्होंने कहा मुख्यतया मुनियों का तो अशुभ भाव होता ही नहीं, और कोई धर्मलोभी जीव देख के अगर इनमें करुणा भाव जागृत हो तो हेल में आया, और नहीं सामने भले बैठे 10-5-25-50 हजार लोग बैठे हैं लेकिन वो अपने स्वरूप में ही लीन है तो उनको अरे बाप रे ये आधा घंटा से लोग बैठे हैं, अरे 2 घंटे से बैठे हैं, अभी तो मुझे लेक्चर देना चाहिए, तो कल कोई भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? दो बातें बताई थी इसमें, तो उन्होंने बताई नहीं है कि धर्म के लोभी जीव देखकर और अपने स्वयं में करुणा बुद्धि का भाव आवे तो, यानी वो सातवें से छठे में आ जाए तो, और छठे से आवे देखा ठीक है फिर अंदर होंगे फिर कैंसिल, यानी यहां करुणा आ जाए। जैसा हम रास्ते में चलते हैं तो कोई ऐसा भिखारी दिखता है तो हमको भाव आता है कि चलो 2-5 रुपया दे दो, तो वो स्वयं का इलाज कर रहे हम, ऐसा है मुनिराज भी स्वयं में करुणा बुद्धि आई तो उसका इलाज करेंगे। ख्याल में है? तो अशुभ भाव है जे शुभ भाव पन पोताना पुरुषार्थ नहीं कमजोरी चे, यहां तो पुरुषार्थ की कमजोरी की नबड़ाई की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने उदाहरण दिया है। छठे गुणस्थान ने ध्यान ना चार भाग पाड़ता आर्थ ध्यान हजू छठे छे एम आवे छे। ये तो अभी मालूम है ना चार प्रकार के ध्यान होते हैं, आपको मालूम है ना कौन कौन से चार प्रकार के ध्यान? अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने बताया आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनको इनमें मुनियों के कौन कौन से ध्यान होते हैं, चार अभी जो हमने मुख्य मुख्य बताए ना, इन चारों में कौन कौन से होते हैं सौभाग चंद जी आप बताएंगे? हाँ, बरोबर बरोबर। इनका ऐसा कहना है छठे गुणस्थान में मूल तो रौद्र ध्यान होगा ही नहीं, तो रौद्र ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है मम्मी जानती है? अच्छा, पांचवें गुणस्थान तक, तो मुनियों को रौद्र ध्यान नहीं होगा, आर्त ध्यान होगा। फिर आर्त ध्यान में जो निदान बंध नाम का जो ध्यान है वो नहीं होगा। अब आगे कहते हैं सातवें गुणस्थान में वह जीव जाएगा तो उसके अर्थ ध्यान भी नहीं होगा, सिर्फ धर्म ध्यान होगा। ये मूल बात है। अब जैसे आठवें में जाएगा तो फिर वहां से शुक्ल ध्यान चालू हो जाएगा। अब ये रफ आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। अब यहां क्या समझा रहे हैं, छठे गुण स्थाने ध्यान ना चार भाग पाड़ता आर्थ ध्यान हजू छठे छे एम आवे छे छ लेशामा छठे गुण स्थाने कृष्ण नील ने कापोत नथी ज्यारे पीत पद्मा ने शुक्ल कही छे। ये देखो, ये यहां पर सब कर्णानियों का विषय उन्होंने बताया है। पहले तो ये छह प्रकार की लेशाएं होती हैं, यह तो भाव लेशा की अपेक्षा से बात चल रही है, यानी द्रव्य लेशा यानी शरीर का जो कर्ण शरीर का जो कलर, में कह रहा था आपने वर्ण बोला, शरीर का जो वर्ण है कलर है उसकी अपेक्षा से वह द्रव्य लेशा कहेंगे। और यहां भाव लेशा यानी जीव के कषाय और योग से रंजित ऐसे जो परिणाम है उसको लेशा कहते हैं। ये लेशा होती छह प्रकार की, तो उसमें से तीन अशुभ होती है और तीन शुभ होती है। ये कपोत नील और कृष्ण ये बढ़ती हुई अशुभ लेशाएं हैं, और पीत पद्म और शुक्ल ये भी बढ़ती हुई शुभ लेशाएं हैं। कोई भी होगी, छह में से कोई भी होगी। द्रव्य लेशा का कोई नियम नहीं, ये भाव लेशा की बात चल रही है। हाँ नहीं नहीं नहीं, एज इट इज हम अभी आएंगे अभी अपने इसमें लेशा प्रकरण में, तो लेशा प्रकरण में बताएंगे आपको। लेकिन यहां तो समझ लेना कि यहां तो अभी बात तो चल रही है भाव लेशा की, लेकिन द्रव्य लेशा कोई भी हो सकती है। हाँ? हमारे दोस्त गए ना उधर किधर सातवें नरक में, तो उनकी तो कृष्ण लेशा है या द्रव्य लेशा, भाई उनके भाव लेशा भी है, शुक्ल पद्म वाली नहीं है, लेकिन द्रव्य लेशा की अपनी बात लेनी है सिर्फ। वहां भाव लेशा मत लेना, वो कृष्ण वगैरह मतलब ये शुक्ल आदि होगी वो मत लेना उधर। यहां तो हम द्रव्य लेशा की बात कर रहे हैं। अब यहां क्या समझा रहे, देखो सेकंड लाइन, छ लेशा मां छठे गुण स्थाने कृष्ण नील ने कापोत नथी, यानी ये अशुभ लेशाएं होती नहीं है। जारे पीत पद्मा ने शुक्ल कही छे, यानी ये शास्त्र में उसका ऐसा वर्णन आता है। छठे गुण स्थाने कषाय नो अंश छे ने एटलू आर्त ध्यान छे, एटलो आत्मा पीड़ाय छे, यानी उसको दुख होता है। जितने प्रमाण में आर्त ध्यान है उतने प्रमाण में आत्मा पीड़ित होता है, और जितने प्रमाण में धर्म ध्यान है उतने प्रमाण में वह सुखी है। माटे क्या क्या कई अपेक्षाएं कथन छे ए बराबर समझू जोइए। आचार्य देव कहे छे कि आ समयसार ग्रंथनी टीका करवानु फल ए चाहू छू के मारी परिणति रागादि रहित शुद्ध थाओ। टीका करवामां परद्रव्य ऊपर लक्ष्य छे, एक तरफ एम कहे कि परद्रव्य ऊपर लक्ष्य करे तो राग थया विना रहे नहीं। मोक्ष पाहुण मां सोळमी गाथा मां कहू छे के परदव्वाओ दुख गई, एटले परद्रव्य ऊपर लक्ष्य जशे तो राग थशे अने तेथी आत्मानी दुर्गति थशे, एटले चार गति मां ब्रह्मण थशे। यहां तो मूल तो ये मिथ्या दृष्टि को सामने रखते हुए बात की है, पर यहां पर भी जब यह जीव परद्रव्य की तरफ ध्यान देता है, इन्हें शास्त्र लिखना है तो अपने स्वतरफ का ध्यान हट गया है, तो कहते हैं वह भी दुर्गति नहीं होगी, चार गति में यानी अगला भाव उसको हो सकता है कि उसी समय उनको अगर आयु का बंद हो जावे तो ऐसा। टीका ना शब्दों छे ते परद्रव्य छे, परद्रव्य पर लक्ष्य जाए तो राग तो छे परंतु जोर विकल्प ऊपर नहीं, यानी लिखने के ऊपर उनका अधिक जोर नहीं है, जोर ध्रुव सभा ऊपर छे। माटे आ टीका थी मारी परिणति राग रहित शुद्ध थाओ एम अपेक्षा थी कहूं छे। उपदेश नो विकल्प उठे छे राग छे, राग छे एटलू बंधन छे, राग नी दिशा पर तरफ छे, राग नी दशा मेली छे, पन मारू जोर द्रव्य स्वभाव पर होवा थी मने शुद्ध स्वभाव नी प्राप्ति थशे एम कहियो छे। परिणति मां परम विशुद्धि थाओ, बीजी कोई चाहना नथी, टीका करवाती मारी ख्याति वधे के प्रशंसा थाय के लोक अभिनंदन आपे ए चाहना नथी, हूँ टीका ना फरमा लाभ ख्याति पूजा दी चाहतो नथी। देखो देखो ये मुनिराज क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो कोई बात लिखने में आ रही है उससे मुझे लाभ नहीं चाहिए, ख्याति नहीं चाहिए, और हमारी उसके कारण से पूजा हो जाए यानी सराहना हो जाए ऐसे हम इच्छते नहीं। अभी इसके साथ साथ देखो हम अपने तरफ देखें, हाँ, और हम कोई चीज ऐसी करते हैं कि हमारी क्या कहते हैं ख्याति हो जाए, ख्याति हो जाए यानी क्या है? अभी क्या करें हम, कहा बाजू वाले बुलाते हैं, कहाँ बुलाते हैं साहब, वो हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा है, हमारे घर में गणपति आया है, तुम प्रसाद लेके जाओ, तुम दर्शन करके जाओ। अब नहीं जावे तो फिर पड़ोसी धर्म कैसा पाला जाएगा, वो लोग नाराज होंगे, हा? तो क्या कहते हैं, और जाऊंगा तो अरे कितने आओ विशाल हृदय के जैन है फिर भी हमारे आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, ख्याति हो गई। अब ये देखो, अभी हम देखते हैं ना, हम अपने टीवी में जो कोई देश में जाएंगे उस देश के कपड़ी पगड़ी पगड़ी पहन के उस भगवान को नमस्कार कर करके हमारे सारे पॉलिटिशियन, तो ये ख्याति लाभ, लाभ क्या लाभ, हमको कोई वोट तो मिले, हा? जो भी जो मिले, तो इसके कारण अगर हम खोटे देव यानी कुदेव कुगुरु कुधर्म को हम पूजते हैं तो हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। क्या नलिन भाई लाभ नहीं होने वाले, होने वाले कौन सा लाभ होगा, चार गति में रखने को मिलेगा विदाउट टिकट, नो रिजर्वेशन नथिंग, बस घूमे रहो। अभी आए ना प्रवचन सार में बात, ये अफल नहीं, अफल नहीं है, उसका फल मिलेगा क्या, संसार में चारों गति में घूमने का फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए वो सफल नहीं है, ख्याल में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो कहते कि हूँ टीका ना फरमा लाभ ख्याति पूजा दी चाहतो नथी, आ प्रकार आचार्य देवे टीका करवानी प्रतिज्ञा लीधी अने गर्वितपणे एना फलनी प्रार्थना करी। अभी यहां से मूल शास्त्र की शुरुआत होती है, आप कहेंगे क्या, वन
के ऊपर सूत्र का अवतार होता है जैसे अमृतचंद्राचार्य ने पहले मंगलाचरण किया था वैसे कुमकुंडाचार्य का शास्त्र यहाँ से शुरू होता है तो वे भी मंगलाचरण करेंगे तो वहाँ भी नमस्कार वाली गाथा पढ़ेंगे, जब हम गाथा पढ़ेंगे वंदित
सर्वसिद्धे दुवमचलम मनोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुण केवली वणिदम ध्रुव अचलने अनुपम गति पामेल सर्वे सीदने वंदीव श्रुत केवली भाषित समय प्रावृत अहो ध्रुव अचलने अनुपम गति पामेल सर्वे सीदने वंदीकहु श्रुत केवली आशित समय प्रावृत हो। क्या कह रहे देखो, यहाँ पर कुंदकुंदाचार्य भगवान कह रहे हैं जो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है, ये किसकी बात कह रहे हैं? तो ऐसी ध्रुव गति, अचल गति और अनुपम गति जिन्होंने प्राप्त की है, ऐसे सर्वसिद्धों को मैं वंदन करता हूँ। क्या कह रहे हैं ये सिद्ध गति कैसी है? तो कहते हैं ध्रुव है। एक दफे अगर तुम सिद्ध गति को प्राप्त हो जाओ तो वहां से तुम हट जाए ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि वह गति कायम टिकने वाली है, ध्रुव है। देखो ये सिर्फ ऐसा बताया तो उसके ऊपर से क्या नक्की हो गया कि जो बाकी जो कहीं अन्य मति मानते हैं कि हमारे भगवान ने ये ऐसा उतार लिया, फिर वो यहाँ सारी गड़बड़ी देखी हमने, कहा ये संसार में तो हमने कुर्मा उतार लिया, हमने वराह उतार लिया, ये तो हम जानते हैं ना। तो ये क्या कह रहे हैं? एक दफे तुम ध्रुव गति यानी जो कभी भी नहीं हट जाए, हमेशा ध्रुव रहे, ऐसी गति को तुम प्राप्त हो जाए, कौन सी सिद्ध गति, तो दोबारा संसार में आने का कारण नहीं है। अच्छा अच्छा, ये आपने नई फैशन निकाली, किसने एक ने कहा ये पूर्व दिशा है तो तुम कह रहे ये पूर्व दिशा है, ऐसी बात नहीं है। क्यों कि यह जो सिद्ध गति जिसने प्राप्त की है वो कैसी प्राप्त की है? तो कहते हैं उन्होंने सारे कर्मों का भेद कर दिया, सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, और सबसे जो बलवान ऐसा जो मोह कर्म था उसकी शुरुआत में ही उसके सेनापति को गिरा दिया। क्यों? यह जो मिथ्यात्व नामक जो उनका सेनापति था उसको ही पहले हमने स्वाहा कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो जो बाकी जो चिकट बैठे थे वो चारित्र मोह वाले, उनके जो कोई बाकी बचे खुचे लोग मतलब सेना सैन्य, उनको हमने दसवें गुणस्थान में खत्म कर दिया। क्योंकि साहब उनके पीछे क्यों लगे थे? बाकी इतने ज्ञानावरणीय थे, दर्शनावरणीय थे, अन्य को तो भी कुछ हाथ पैर लगा दे, तो कि उनके पीछे क्यों लगे? अरे ये आठों कर्मों में तो एक मोहनी कर्म ही ऐसा है कि जिसके कारण यह जीव ऑन एंड ऑन अगेन एंड अगेन वारंवार नए नए कर्मों का बंधन करता है। ये आठ कर्मों में मोहनी कर्म के बलबूते पे ही हमें नया कर्म का बंधन होता है। अगर उसी को हम हटा दिए तो बाकी बचे खुचे तो निकल ही जाएंगे। जैसे कि हमने वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया, उसके मूल से निकाल दिया, तो ऊपर की जो झाड़ पत्ती जो होती है मतलब फूल पत्र आदि, वो तो अपने आप सूख के खत्म हो जाएंगे। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि एक दफे इस मोहनी कर्म का इस जीव ने नाश कर दिया है तो दोबारा हमें नया कर्म नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्मों के कारण ही इस जीव को शरीर आदि मिलते हैं। अगर कर्म ही नहीं रहे तो शरीर दोबारा कहाँ मिलेगा? तो इस कारण यह जीव दोबारा संसार में आ ही नहीं सकता, ऐसा जो कोई मानते हैं उनके मत के खंडन के लिए ध्रुव है। ये सिद्ध कैसे हैं? ध्रुव गति कैसी है? ध्रुव गति है। और कैसी है? अचल है। एक ही अर्थ है फिर भी उसमें फर्क है। अचल यानी बिल्कुल चलायमान नहीं हो जाए ऐसी है, और अनुपम है यानी जिसके उसके साथ किसी की तुलना नहीं कर सके, ऐसी ये मोक्ष पर्याय जो है। क्यों? अरे मोक्ष पर्याय तो ऐसी है, ऐसा लोग कहते हैं बहुत जोर जोर से। क्या कि जो सर्वार्थ सिद्धि के जीव जो है देवगति के, वो जितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं उनके क्या कल्प वृक्ष है, चाहे जो मिलता है खाओ पियो मौज करो, हा? उनको कोई मेहनत करने की नहीं, बाल बच्चे भी नहीं कि हम संभालते संभालते हैरान हो जाए, हा? तो उनको जो सुख है उससे कई गुना ज्यादा सुख मोक्ष में है, ऐसा कंपैरिजन करना चाहते हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्वर्ग के देवों को, अभी हम सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ो, नीचे के ले लो, भवनत्रिक वालों को लो, तो भवनत्रिक में तो वहां पर भी सुख सुविधाएं तो काफी है, कुछ नहीं ऐसी बात नहीं है, उससे वो अनंत अनंत सुखी ऊपर के है मोक्ष के, वह भी गलत है। क्यों? कि यह जो मोक्ष में सुख है या चारों गति में जिसको हम सुख कहते हैं वो ऐन्द्रिक सुख है, इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त होने वाला जिसको हम सुख कहते हैं, जो स्वयं सुख तो है नहीं, वो तो सुखाभास है, दुख ही है, लेकिन हम उसकी तुलना जो अतीन्द्रिय सुख है उससे करना चाहते हैं, तो यही हम मोक्ष तत्व के बारे में भूल करते हैं। ख्याल में आया? तो किसी को कहा, एक गुजराती भाई जाते थे बड़ौदा से, कि मैं बहुत दुखी हूं, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, तो चलो हम तुमको मोक्ष ले जाते हैं। अच्छा मोक्ष ले जाएंगे? हाँ, चलो चलो जाएंगे जाएंगे। उधर क्या करने का? कुछ नहीं करने का, उधर आराम का, बस कुछ नहीं करने का। उधर मोक्ष में क्या करने का रहते हैं? तो उधर खाने पीने की सारी सुविधा, हाँ, तो उधर खमंग ढोकड़ा मड़े के ऐसा पूछते हैं। बड़ौदा के लोग खाते क्या कि सूरत के खाते, मुझे मालूम नहीं है। यानी हम ऐसा समझते कि खाने पीने की वहां सुविधा होगी, अरे वहां तो मिलेगा ही नहीं भाई तुझे। ख्याल में आए? क्योंकि हमारे तो मुनिराज जो होते हैं वो तो सात्विक गुण स्थान में जाएंगे तो उनको हार संज्ञा नहीं होगी। क्यों विनोद भाई? क्या अभी संज्ञा की बात आने वाली है? अभी आपने तो आहार संज्ञा जो है वो सात्विक गुण स्थान वर्ती को नहीं होगी ना, तो अगले गुण स्थान वालों को कहां होगी? और थोड़ा खींचातानी करो तो अरहंत अवस्था में कहां होगी? जो अरहंत अवस्था में नहीं होगी वो सिद्धावस्था में कहां से होगी? ख्याल में आया? तो ये हम क्या करते हैं, मोक्ष की तुलना या संसार सुख से करते हैं, तो हम मूल में ही भूल करते हैं। तो सात तत्वों का हमें यथार्थ ज्ञान भी नहीं और श्रद्धान भी नहीं, दोनों बातें नक्की हो जाती है। तो यहां पर ये कह रहे हैं, ध्रुव अचलने अनुपम गति पामेल सर्वसिद्धने वंदी, उनको वंदन करके मैं कहूंगा क्या? श्रुत केवली भाषित, यानी जो श्रुत केवली है या केवली भगवान है, उन्होंने जो कोई मार्ग बताया है वह मैं आपको कहूंगा। और ये समय प्रावृत आपको, यानी प्रावृत यानी भेटणु जेने के वह गुजराती में बोलते हैं ना, आजकल की भाषा में गिफ्ट। तो ये समय प्रावृत नाम का मैं आपको भेंट देने आया हूं, वो मेरे घर की बात नहीं है, ये श्रुत केवली या केवली भगवान ने बताई हुई जो बात है उसको मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी ये आचार्य कहे चे गाथार्थ पढ़ते हैं, ध्रुवम, ये ध्रुवाम हो गया है, बरो रहे हो जो ध्रुवम, ध्रुव, अरे ये संस्कृत है, जरा देख ले तो, अचलाम लिखा है फिर यहां से, क्या गलत है क्या, देख लेना है। कहते ध्रुव अचल अने अनुपम्याम, एटले अनुपम ए त्रण विशेषणों थी युक्त गतिम, गति ने प्राप्तान, प्राप्त थेल एवा सर्वसिद्धान, सर्वसिद्धों ने नमस्कार करी। अहो, अच्छा ध्रुवाम भी बरोबर है और अचलाम, बरोबर। श्रुत केवली मणितम, श्रुत केवलियो कहेलो इदम, एटले आ समय प्रावृतम, समय सार नामना प्रावृत ने वक्ष्यामि, एटले कहीश। आई संस्कृत टीका में अथ शब्दना मंगलना अर्थने सूचवे छे, ग्रंथनादि मा सर्वसिद्धों ने भाव द्रव्य स्तुति थी पोताना आत्मा मा तथा परना आत्मा मा स्थापी ने आ समय नामना प्रावृत नु भाव वचन अने द्रव्य वचन थी परिभाषण शुरू करिए छे, एम श्री कुंदकुंदाचार्य कहे छे। क्या कहते? देखो यहां पर जो मुनिराज है वे स्वयं ये सिद्धों की स्थापना अपने स्वयं में तो करते ही हैं, उनको वंदन तो उन्होंने किया ही है, लेकिन ऐसा कह रहे कि जो सुनने वाले हैं या पढ़ने वाले जो वाचक हैं इनमें भी यह सिद्धों की स्थापना कराते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव यानी जीव द्रव्य के प्रत्येक जीव द्रव्य का स्वभाव सिद्ध समान ही है, ऐसा पहले तुम अपने में उस सिद्धों की स्थापना तो करो। जब तक इस बात का तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं, तब तक यह बात जो बताने में आ रही है उसका तुम्हें भाव वासन ही नहीं होगा। इसलिए क्या कह रहे, देखो अथ अथ यानी ये शब्द क्या है, मंगलण अर्थ ने सूचवे छे, यानी मांगलिक कर रहे ना, मंगलाचरण कर रहे। ग्रंथ आदि मां सर्व सिद्धों ने भाव स्तुति थी अने द्रव्य स्तुति थी। भाव स्तुति थी अने वास्तव में भाव स्तुति यानी अपने स्वरूप का अनुभव करना, अपने आत्मा में लीनता करना, यही सिद्धों की भाव स्तुति है। और उनको हाथ पैर से आदि जो यानी या अष्ट द्रव्यों से जो भी है, यहां तो अष्ट द्रव्य की बात नहीं है, तो वह जो पूजन करना नमन करना जो है वह द्रव्य स्तुति है। क्या कह रहे हैं ये, हम तो अभी तो हम ऐसा समझते ना, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। तो भाव पूजा यानी क्या कि सिर्फ बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना, यानी अष्ट द्रव्य से पूजा, यानी जो आठ द्रव्य जो हम तंदुल आदि जो लेते हैं ना, पुष्प जल आदि, उनसे पूजा करना वह द्रव्य पूजा, और वह बिना चढ़ाए सिर्फ हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठ के पूजा करना वह भाव पूजा। यह तो उपचार का उपचार है। क्या कहा यहां सिद्धों की भाव पूजा। ये सिद्धों की भाव पूजा कब कहने में आएगी कि जब सिद्ध स्वरूप अपने स्वभाव का जिसने अनुभव किया है, उसमें जिसने एकाग्रता लीनता स्थिरता की है, उसने सिद्धों की भाव पूजा की और उन सिद्धों को हाथ से नमस्कार किया या वचन से नमस्कार किया जो भी है, उसको कहेंगे द्रव्य पूजा। तो ये कौन कर सकता है कि जिसने आत्मा का अनुभव किया है। तो अभी हमारी जो सिद्धों की जो पूजा होती है वो कैसी होती होगी समझ लेना, ना कि वो द्रव्य पूजा है ना कि वो भाव पूजा है। भाव पूजा है ना द्रव्य पूजा है, लेकिन यह तो समझ लो, बोलूंगा तो नाराज होंगे कि कल से बंद करूंगा, ऐसा नहीं करना। तो समझना कि ये वह नहीं है जो हम समझते हैं, ख्याल में है। अरे जिन्होंने ये मार्ग बताया और उच्च उच्चतम जो उन्होंने जो दशा प्राप्त की है, वैसी दशा हमें प्राप्त करनी है, इसलिए हम उनको पूज रहे हैं कि उनसे कुछ अन्य चीज चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हाँ वो उसके लिए थोड़ी हम उनको पूछते हैं। नहीं तो आप कहेंगे अच्छा बताया, ये बहुत अच्छी बात बता रहे कि कल से पूजा ही बंद कर दें हम, ऐसा पागलपन मत करना। तो क्या कह रहे देखो, ग्रंथन आदिमा सर्व सिद्धों ने भाव द्रव्य स्तुति थी पोताना आत्मा मा, ये और एक नई बात, तथा परना आत्मा मा स्थापी ने, कोने सिद्धों ने आ समय नामना प्रावृत नु भाव वचन अने द्रव्य वचन थी परिभाषण, यानी उसके बारे में जो कुछ मैं कहने वाला उसको परिभाषण का परिभाषण यानी परिपूर्ण भाषण शुरू करिए छे। एम श्री कुंदकुंदाचार्य कहे छे, हे सिद्ध भगवंतो, सिद्ध पनाने लिदे साध्य जे आत्मा तेना प्रतिच्छंदना स्थाने छे। ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा समझा रहे हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में तो हम किसको देखते हैं, क्या बात करते हैं, जो मंदिर के जो मूल नायक होंगे उनको देख के आते हैं। जैसे हम दादर मंदिर में गए तो दादर मंदिर के मूल नायक कौन है आप जानती है, लक्ष्मी महावीर भगवान, महावीर भगवान का दर्शन करके आते हैं हम। तो कह रहे हो आप गलत कर रहे हो, क्यों, यहां कह रहे हैं कि वह तो प्रतिच्छंदना स्थाने, यानी वे तुम्हारे लिए प्रतिबिंब है। जैसा हम आईने के सामने जाते हैं तो आईने में किसको देखते हैं, आप किसको देखते हैं, अपने को देखते हैं ना। तो हम भगवान के पास जाके भगवान को नहीं देखना चाहिए, भगवान जिस अवस्था में है जिस रूप में है वैसा द्रव्य से मेरा स्वभाव है, ऐसा यानी वो मेरे लिए, मैं बिंब हूं तो वो मेरे लिए प्रतिबिंब है, तो उसको प्रतिच्छंद कहा। तो क्या लिखते हैं देखो कि भगवंतो, किस कारण सिद्ध बनाने लिदे, तो इसके लिए क्या होगा, साध्य जे आत्मा, ये अपना जो आत्मा है जिसको हमें साध्य करना है, मतलब सिद्ध कर प्राप्त करना है, तेना प्रतिछिंदना स्थाने छे, तो वहां वो उनको देखते ही मैं भी ऐसा हूं, ऐसा अपने को अंदर से उछाल आना चाहिए। तो कहते जेना स्वरूपनु संसारी भव्य जीवो चिंतवन करीने ते समान पोताना स्वरूप ने ध्याई ने तेमना जीवा थई जाय छे, अने चार गतियो थी विलक्षण जे पंचम गति मोक्ष तेने पामे छे। ये बात ख्याल में आ गई प्रभावेन, बात ख्याल में आ गई हा? तो हमें तो वहां जाके भले हम भगवान के दर्शन करते हैं उनको देखना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ इस रूप में भी हूं ये बात हमारे अंतरंग में तो उठनी ही चाहिए, नहीं तो हमारे दर्शन का है कि पर के दर्शन हुए। यहां तो कहते हैं कि निज दर्शन कर, जिन दर्शन करते हुए निज दर्शन होना चाहिए, ख्याल में है? तो यहां कह रहे हैं ते पंचम गति मोक्ष तेने पामे छे, केवी छे ते पंचम गति, स्वभाव रूप छे, ते स्वभाव भाव रूप छे, तेथी ध्रुवपना ने अवलंबे छे, चारे गतियों पर निमित्त थती हुआ थी ध्रुव नथी। अभी इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया, ये चारों गति है वो हमेशा कायम रहे ऐसी नहीं है, क्यों कि पर निमित्त है उसमें, ये जीव की जो भाव है उसके लिए उसको अलग अलग गतियों में घूमना पड़ता है, कर्म के कारण नहीं जाता है, ख्याल में? तो कह रहे हैं कि तेथी ध्रुवपना ने अवलंबे छे, कोने स्वभाव रूप जे ध्रुव छे ते ध्रुवपना ने अवलंबे छे, चारे गतियो परनमित्ति थती होवाती ध्रुव नथी, विनाशिक छे, एनो विनाश थाय छे, ध्रुव विशेषण थी पंचम गति मा ए विनाशिकता नो व्यवच्छेद थयो, यानी ये सिद्ध गति विनाशिक नहीं है ये बात की सिद्धि हुई। केवी छे वळी ते गति केवी छे, अनादि काल थी अन्य एटले परभावना निमित्तती थतुं जे परमा भ्रमण तेनी विश्रांति एटले अभाव वश अचलपना ने पामी छे, यानी अनादि काल थी ये जीव क्या कर रहा है, अन्य भावना यानी पर की भावना के निमित्त से उसे क्या हो रहा है कि ये परमा भ्रमण थाय छे और उससे अभी वो विश्रांति ले रहा है, यानी उसका अभाव कर दिया है, इसके लिए वो गति कैसी है, अचलपना ने पामी छे। आ विशेषण थी चारे गतियों ने पर निमित्त थी जे भ्रमण थाय छे तेनो पंचम गति मा व्यवच्छेद थयो। वळी ते केवी छे, जगत मा जे समस्त उपमा योग्य पदार्थो छे तेमना थी विलक्षण, विलक्षण यानी बिल्कुल विपरीत कहो या जुदी कहो, अद्भुत महात्म्य हुआ थी तेने कोई नी उपमा मड़ी शकती नथी। आ विशेषण थी चारे गतियों मा जे परस्पर कथंचित समानपनु मड़ी आवे छे तेनो पंचम गति मा व्यवच्छेद थयो। अभी जो चार गतियां हैं उसमें किसी न किसी अपेक्षा से समानता है, यानी उसकी उपमा हम दे सकते हैं क्योंकि वो भी क्षणिक है, वह भी बदलने वाली है, वैसी ये जो सिद्ध गति है उनसे बिल्कुल जुदी है, उसके साथ किसी की हम तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते। वड़ी ते केवी छे अपवर्ग तेनु नाम छे, ये जो बातें हम कल लेंगे, 8:30 तो हो गए हैं, अपवर्ग जो लिखा है ना वहां से हम आगे बात बढ़ाएंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकर्णमो सदा गीत हो।